फिर आगे अल्लाह सुबहान तआला ने इसकी वजह बताई, बड़ी जबरदस्त आयत है। अल्लाह ताला कहता है वा अम्मा समूदू, और बाकी रहे समूद, यानी आदि तो अपने इंजाम को पहुंच गए, अब रह गए समूदी। हालांकि देखिए तरतीब में कौमे समूद पहले आई थी, आद बाद में आई थी, लेकिन तस्करे में यहाँ कौमे आद का जिक्र पहले हुआ, अब कौमे समूद का। क्या फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, इसको तो हाईलाइट ही कर ले। इया का नाबुदु व इया का नस्तईन के बाद जो हमने सूरत फातिहा से ही देखनी शुरू कर दी थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सूरह बकरा में देखी हुदल लिल मुत्तकीन, तो यहाँ हम देखेंगे हिदायत के दर्जे। पहले आयत का तर्जमा देख लेते हैं, बाकी रहे समूत, तो इन्हें हमने सीधी राह दिखाई थी, लेकिन उनका मिजाज कितना बिगड़ा हुआ था, उनकी चॉइस कितनी खराब थी। फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, बस उन्होंने पसंद किया अंधेपन को हिदायत पर, यानी उनको हिदायत अच्छी ना लगी, अंधे बन के जीना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ, फहजतहुम साइकतुल अज़ाब, बस पकड़ लिया इनको अजाब की कड़क ने जो रुस्वा कुन है। फहजतहुम साइकतुल अज़ाब अलहूनी बिमा कानू यकसिबून, पकड़ लिया इनको अजाब की उस कड़क ने जो रुस्वा कुन है उन करतूतों के बदले में जो के उन्होंने किए थे। ये सबका हाल नहीं हुआ, ये सिर्फ इनका था, बाकी लोगों का क्या हाल हुआ। वनजैन अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, और हमने इन लोगों को निजात दी जो ईमान लाए और अल्लाह की नाफरमानियों से डरते रहे। यहाँ देखिए कि अल्लाह सुबहान तआला का एक मिजाज हमें समझ में आता है, और वो क्या है कि अल्लाह हर बंदे को हिदायत देना चाहता है। हिदायत का लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल होता है अमूमन, वैसे तो इसके कई डिफरेंट एंगल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 23 पारों में हम कर चुके, लेकिन यहाँ एक और सोच देते हैं आपको। वो क्या कि एक मौका होता है कि किसी को मंजिल मकसूद तक पहुँचा देना, या किसी को मंजिल की राह दिखाना। यहाँ फहदैनाहुम का क्या मानी है, अल्लाह ताला कहते हैं हमने इनको सीधी राह दिखाई थी। ये कौन सी है, इब्तदाई दर्जे का रास्ता। हर बंदे को हिदायत तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने चार रिसेप्टर्स रखे हुए हैं, उसकी फितरत अलस्तु बिरब्बिकुम, कायनात जिसके अंदर इंसान गौर फिक्र करता है तो अल्लाह तक पहुंच जाता है, विजडम यानी अकल सोच हर चीज बता रही है कि कायनात का निजाम एक साथ से हो रहा है, और चौथी चीज है वही रेवलेशन, हर दौर का नबी जो लेकर आता था। कौम आद के पास भी नबी आए, कौम समूद के पास आए। फहदई ना हम में मुराद क्या है कि हमने रसूल भेजकर हिदायत का रास्ता दिखा दिया, बता दिया लोगों को इधर क्लास होती है, लोगों को बता दिया इधर मस्जिद का रास्ता है, लोगों को बता दिया ये करो तो फायदा होगा, ये करो तो फायदा नहीं होगा। तो लोगों को पता तो चल गया सारी बातों का, लेकिन कुछ लोग सुस्तियों के मारे हुए, कुछ नफ्स के मारे हुए, कुछ ख्वाहिशों के दिलदादा, कुछ अल्लड़, कोई दुनिया के दिलदादा। फस्तहब्बुलामा अल्लाह हुक्म, जितना इंसान रोले इस आयत पे उतना थोड़ा है। फस्तहब्बु क्या इख्तियार के, वैसे तो हुब का लफ्ज छुपा हुआ है ना, लेकिन जब अलिफ सीन और ता के साथ आता है ना इस्तेहबाब, सुना वो उर्दू में लफ्ज कि ये इस्तेहबाब का दर्जा है, तो चूज करने का मानी इख्तियार किया। दे क्वाइट दे चोजिस, क्या चूज किया उन्होंने, अलामा अंदरन बन के रहना पसंद कर लिया। तापक टोइया मारा इंसान, कोई मसला पड़ता है तो ढूंढते हैं दीन वालों को, कोई मुश्किल आती है तो वजीफे पूछते हैं, लेकिन आम जिंदगी में दीन से अंधे, नूर की बजाय अंधेरों के रास्ते वाले, जब उस अंधेरे में फिर कुछ ठोकर लगती है फिर पहुंचते हैं पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो अल्लाह हिदायत की चकाचौंध एक दफा जिंदगी में जरूर लाता है। हर बंदे को एक ऐसी सर्च लाइट जिंदगी में जरूर मिलती है, कभी दुख के मौके पे, वो दुख उसके और रब के बीच के पर्दे हायल करके उसको रब की जरूरत महसूस कराता है, कभी अल्लाह ताला ये हदई ना होंगी कैफियत किसी खुशी के तौर पे दिखाता है, ऐसी अनएक्सपेक्टेड किस्म की खुशी मिल जाती है कि बंदा मान जाता है कि अंता रब्बी व अना अब्दुक, अल्लाह तू ही रब है मेरा और मैं तेरा बंदा हूँ। कभी किसी को बीमारी में डाल के अल्लाह फहदई ना हम करता है, क्या हो देखो सेहत में तुम इससे बात नहीं करते थे, अब जरा आके देखो कि तुम्हें क्या कुछ मैंने दिया और तुम्हें क्या कुछ कहा। इसी तरह कुछ को फिर इल्म के रास्ते से, कई इल्म के रास्ते पे आके पलट जाते हैं, जिनको टेस्ट नहीं अच्छा लगता, पसंद तो आता है, खामोश रहना अच्छा नहीं लगता, कुछ को पाबंदी अच्छी नहीं लगती, कुछ टेस्ट देने के नाते से भाग जाते हैं, कोई तर्जमों से भाग जाते हैं। इस एक जुमले को 100 जुमलों में बदल सकते हैं कि फाहदई ना हम मुस्तहब गुलामा, अलार्म बजा बंद करके सो गए, ये भी है फाहदई ना हम फस्तहबुन नौम, अलार्म बजा उन्होंने नींद को पसंद किया। क्या इंसानों की इस दुनिया में ये नहीं हो रहा? आप देखिए कि अल आमा अलल हुदा लिख के देख लें, 70 एंगल इसके समझ आ सकते हैं कमोबेश। लोग अंधा रहना चाहते हैं, हिदायत पे नहीं चलते, गाइडेंस अच्छी नहीं लगती, इंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं लगती, मनमाने काम करना चाहते हैं, पाबंदियां लगती है ना अल्लाह की किताब के साथ जुड़ने से। कहते हैं क्या मुसीबत है, हमको किसी से कम, हम क्यों बातें सुने भाई, घर में हमारी इज्जत है, यहाँ आते हैं डांट पड़ती है, घर में हम बच्चों को डांटते हैं, यहाँ हमें डांट पड़ती है। ये डांट बहुत कीमती है, हर माँ बाप सारी जिंदगी डांटते नहीं रहते। अब देखिए कि जितनी माँ बाप की ख्वाहिश होती है और होनी चाहिए, अगर जिन माँ बाप की नहीं है तो उन्होंने ज्यादती की, अल्लाह उनको माफ करे। लाड नखरे अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, लेकिन बच्चे के नाखून भी कटते हैं, उसको गुस्ल भी दिया जाता है, उसके बाल भी कटाए जाते हैं, वो रोए वो धोए, माँ उसके मुंह में कोई चॉकलेट डाल देती है लेकिन उसको फिर भी उसके काबिल करती है। अगर इंसान खुद को अल्लाह के काम के काबिल करना चाहता है ना, तो उसको अपनी नोक पलक दुरुस्त करवानी पड़ेगी। देखिए जिसको खुद नहीं चलना आता वो दूसरे को चलने का क्या अंदाज सिखाएगा, जिसको खुद नहीं बोलना आता, बैठना नहीं आता, सब्र करना नहीं आता, जिसका अपना ही मामला बिगड़ा हुआ है वो दूसरे को क्या बताएगा। एक माँ का जो बिगाड़ होता है ना वो 4 बच्चों में जाता है। आप देखें जो माएँ ऊँची बोलती है ना उनके सब बच्चे ऊँची बोलते हैं, जो माएँ बड़ी हम्बल नाइस होती हैं आप फील करें उनके बच्चे बड़े नाइस होते हैं। बाज़ औरतें जब अपने बिगड़े हुए बच्चों को किसी ऐसी माँ के बड़े डिसेंट बच्चों से कंपेयर करती है ना, कहती है तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हें अल्लाह ने कितने ठंडे बच्चे दिए। सोचें कि आपने तो खुद उसको बोल दिया, आप तो खुद चीख चीख के बोलती थी, वो बच्चा तो खामोश आया था। बच्चे के पास सब कुछ होता है ना पैदाइश के वक्त, जुबान भी हो सकती थी, अल्लाह ने कहा माँ तू सिखा इसको, कान है बच्चे के, जुबान नहीं होती या है तो बोल नहीं पाता, क्योंकि अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि माँ इसको क्या सिखाती है। और सिर्फ इस एक चीज से माएँ बच्चों को कहाँ बिगाड़ती हैं। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अगर अब हमारी जिंदगी में हिदायत की चक्का चौंध हो गई है तो कभी हमें आमा के दर्जे पे न ले जाना, हम गहरी नींद न सो जाएं, फिर गफलतों में न पड़ जाएं, हम फिर ये न कहें कि हमसे ये नहीं हो सकता, हमसे वो नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता है दुनिया में उसका अंजाम है फहजत हम साइकतुल अज़ाब बिलहून, रुसवाइयों की पकड़ ने उनको पकड़ लिया। दोबारा देखिए लफ्ज़ फिर वही आ गया, पकड़ लिया उस अज़ाब की कड़क ने जो रुसवा को नीमा खान यकसीबून, क्योंकि कमाइयाँ ऐसी थी, करतूत ऐसे थे। हाँ हम निजात देते हैं ईमान वालों को, किसको निजात मिलती है, जो फस्तहब्बुल हुदा अलल आमा, जुमले को बदलें, हिदायत उसको मिलेगी जो हिदायत के रास्ते पे चलेगा, और जिसने हिदायत के मनमाने मानी निकाल लिए, अपने आप को हिदायत पे कहा, सबको गलत समझा, तो याद रखिए कि ऐसे लोग जो हैं वो फिर कभी भी कामयाबियाँ नहीं पाते, ऐसे लोगों के हाँ कभी भी खैर नहीं होती। अब आगे क़यामत के कुछ मनाजिर, और ऐसे लगता है कि हमारे सामने एक शीशा रख दिया गया, हम चीज़ें देख तो सकते हैं, अभी छू नहीं सकते, अभी पा नहीं सकते। आप खुद को वहाँ खड़ा करके फिर सुनिए इन आयात को, और वो क्या, ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون, اور ذرا خیال تو کرو یہ جو واو ہے نا اس کے بعد اس گرو کا لفظ محذوف ہے, محذوف کہتے ہیں حذف ہے یعنی ہے نہیں ہے, مراد کہے کہ وہ وقت یاد کرو, جیسے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, ہم نے سورہ بقرہ میں بہت دفعہ یہ انداز دیکھا, تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو, اشارہ یہی ہے اس کی طرف کہ ذرا رغبت دیکھو, ذرا غور کرو, دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, اللہ کی ذات نے یہ منظر ہمارے سامنے آج دنیا میں کیوں رکھا, تاکہ کل تم خود کو وہاں جا کر اجنبی محسوس نہ کرو۔ دیکھیے جو یومنون بالغیب رکھتا ہے نا, اس کو قیامت کے میدان میں جا کر بالکل حیرت نہیں ہوگی۔ مثال دیتی ہوں, چلیں پھر آپ اگلی آیتوں کو مزید انشاءاللہ اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ یہاں سے پاکستان جاتے ہیں, جب آپ یہاں سے پہلی دفعہ گئے اور راستے میں آپ دبئی ایئرپورٹ پہ رکے, بالکل فرسٹ ٹائم تھا آپ کا, आपको घबराहट थी ना, इधर जाऊं क्या, गली क्या, नहीं वो नहीं, और अगर खुदा ना खास्ता आप जा भी अकेले रहे, लेकिन अगर 3, 4, 6 दफा आप वहां चले जा चुके, अब यहां से जाते हैं कोई मुश्किल होती है? कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जाना था, वो पहले ही सब नेट से निकाल के वहां के एग्जिट डोर सारा कुछ देख चुके होते हैं। जिन लोगों ने इस दुनिया में रह के आखरत को तस्वुर की आंख से देखा, कुरान की आंखों से देखा, हदीस की आंखों से देखा, सीरत के पहलुओं से देखा, कल क्यामत के दिन बिल्कुल नहीं घबराएंगे। हदीस में आता है कि जन्नती जन्नत में जाएंगे, इतनी आसानी से अपने घरों में पहुंच जाएंगे जितनी आसानी से दुनिया के घरों में भी नहीं पहुंचते। लेकिन दूसरे लोग वो सटपटाए फिरे होंगे, बौंके पे फिर रहे होंगे, बुखलाए होंगे, अगली फ्लाइट पकड़नी है, पिछली है, कोई नहीं, पता नहीं जाऊं किधर। तो कहा वह यौम युहशरु अदाउल्लाहि इलन नार। जरा गौर कीजिए लफ्ज अदा पे, अल्लाह के दुश्मनों को, अदू की जमा है आदा, और याद करो जरा ख्याल करो उस दिन का जब जमा किए जाएंगे अल्लाह के दुश्मन आतिश जहन्नुम की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मौके पे अबू जहल को कहा था, ओ दुश्मने खुदा, बड़ा भारी जुमला लगता है, जरा लिख के तो देखे, तो मेरा आपका दुश्मन हो तो चलो, हम क्या है और हमारा दुश्मन क्या, अल्लाह का दुश्मन। अल्लाह कहते हैं मेरे दुश्मनों को आग में जमा किया जाएगा, फहुम यूज़ाउन, और वो गिरोहों में बांट दिए जाएंगे, क्योंकि उनको गिरोह अच्छे बड़े लगते थे। कहाँ किसको बांट दिया जाएगा जो जिस दर्जे का होगा। यूज ऑन के लफ्ज को थोड़ा सा समझ लीजिए, नफ्स का अपनी ख्वाहिश से रुक जाना, इसको अरबी जुबान में अल वजा कहते हैं, वाओ जा आइन वजा। जब लश्कर के हरावल दस्ते को, हरावल होते सबसे ऊपर पहला वाला, हरावल दस्ते को पेश कदमी से रोक दिया जाए ताकि लश्कर का आखिरी हिस्सा भी जमा हो जाए, तो इसको वरा कहते हैं। बस आप कभी यहां से एक मिल के पिकनिक पे गए 10 गाड़ियों के अंदर, अब सब जा रहे हैं, एक वक्त आता है आपको पिछली गाड़ियां नहीं दिखती, तो क्या करते हैं, सबसे आगे वाली गाड़ी को कहते हैं तुम इधर साइड पर रुक जाओ, क्यों, पिछली भी आ जाए। इस कैफियत को अरबी जुबान में यूज़ आउन कहते हैं, आ जाओ जरा सारे अगले पिछले आ जाओ ताकि सारा लश्कर इकट्ठा हो जाए। इससे क्या पता चलता है, अल्लाह अकबर, इंतजार। सबसे बुरी चीज जो इंसान को लगती है ना, वो इंतजार लगता है, अच्छा हो या बुरा। अच्छी चीज में तो बेसब्री आती है ना, जल्दी हो कब होगी। आप देखिए किसी का ऑपरेशन होने वाला और बार बार डिले हो ना, तो कहते हैं अब जान छोड़ो ना, ले लो फिर जो करना है, टेस्ट लेना है ले लें, बार बार आगे कर रहे हैं आगे कर रहे हैं। इंसान इंतजार नहीं बर्दाश्त करता, जहन्नमियों को अगले पिछलों को जोड़ने के लिए इंतजार कराया जाएगा। ये नहीं कि अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल है, कि वहाँ मैनेजमेंट का कोई मसला है, कि अच्छा आप इनको मिला लें फिर ले जाए। तकलीफ आजमाइश, जहन्नुम में जाने से पहले ही कुछ पकड़ ऐसी हो रही है कि जिसके नतीजे में लोगों को वहां जमा किया जा रहा है, रोका जा रहा है। इसी तरह फिर अल वज़ा का मानी, ज़ा के ऊपर जब शद आ जाती है तो इसका मानी होता है तकसीम करना, टू सेपरेट, क्लासीफाई करना, अलग अलग ग्रोहों में बांटना। इससे क्या पता चलता है कि हर जुर्म का बंदा अपने हम जुर्मों के साथ होगा। जब कोई चीज रोकी जाती है ना, तो बिलाखर वो जमा हो जाती है। दोनों मानी यहाँ जमा हो जाते हैं कि ऐसे लोग जो दुनिया में खुद पसंदियों के साथ जी रहे थे, अल्लाह ने उनको अपना दुश्मन कहा। जिन्होंने अल्लाह की शरीयत को ना माना वो अल्लाह के दुश्मन, ऐसे ही है ना। देखिए बाकी कौन होता है, जो उस मुल्क का कानून ना माने तो अल्लाह के दुश्मन कौन है, जो अल्लाह के कानून ना माने, क्या किया जाएगा, रोको। अपनी पीठें ठोक ठोक कर कहते थे हम बड़ी कुव्वत वाले, हम बड़े ताकत वाले, कजरा इनको रोको, ये मेरे दुश्मन है और अब इनके साथ जो होने वाला है वो अल्लाह की पनाह, घेर घार के उनको ले जाया जाएगा, और वहां जाके जब उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होगी तो उस पर वो गवाह तलब करेंगे। और गवाह कौन होंगे, आइए देखते हैं। हत्ता इसा मा जाऊहा, और यहाँ तक कि जब वो दोजख के पास आएंगे, ये जो हा है ना इसके नीचे एरो लगाइए और लिखिए जहन्नुम, उस जहन्नुम के पास आएंगे क्या होगा, शहीद अलैहिम समउहुम व बसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानु यामलून। यहाँ तक के जब वो दोजख के करीब आ जाएंगे और हिसाब शुरू होगा, उस वक्त गवाही देंगे इनके खिलाफ उनके कान, उनकी आंखें और उनकी खालें। किस बात की, बिमा कानु यामलून, इसकी जो वो किया करते थे। وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, और वो कहेंगे अपनी खालों से تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، تو وہ کہیں گے کہ بلوا دیا ہم کو اس اللہ نے جس نے بلوایا ہر چیز کو، وہو خلقکم اول مرہ، اور اسی نے تم کو پیدا کیا پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف اب تم لوٹائے جا رہے ہو۔ قیامت کے دن انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا جسم ہوگا۔ چلیے کیسے، چھوٹی سی بات کرتے ہیں، یہ جو ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، اور خاص طور پہ یہاں جن چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ کون ہے آپ کو پتا؟ یہ ہمارے غلام نہیں ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں، یہ سی آئی ڈیز ہیں، یہ رپورٹرز ہیں، یہ جرنلسٹ ہیں۔ آپ کبھی بھی معروف لوگوں کو دیکھیں نا، تو وہ میڈیا والوں سے بہت گھبراتے ہیں۔ کہیں بھی ہوں گے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کیمرے کی آنکھ تو نہیں ہم پہ، کیونکہ یہ ہماری چھینک بھی پورے میڈیا پہ چلی جانی ہے۔ اب اس سے انسان بچتا چھپتا ہے۔ بعض وقت سنا ہوا ہے جی، بعض ہیروئنیں برقعے پہن پہن کے شاپنگ کرنے جاتی ہیں کہ کہیں ان کی تصویریں نہ آ جائیں۔ مان لیا، باہر کے سارے کیمرے بند، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ ہمارے ساتھ جو رکھے ہیں نا، یہ سی آئی ڈیز ہیں، یہ خود ہماری رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ گھر کا ملازم جب کسی کے بارے میں گواہی دے دیتا نا، تو پکڑا جاتا ہے۔ یہ بالکل گھر کے بھیدی ہیں اور یہی لنکا ڈھائیں گے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو بلایا جائے گا، تو وہ اپنے جرم کا انکار کر دیں گے۔ مختلف روایات اور مختلف آیتوں میں ملتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے گواہی پیش کرو، کچھ گواہ آئیں گے، وہ کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا خیال ہے اگر تمہارے جسم کو گواہ بنا دیا جائے؟ کہے گا ہاں یہ مجھے ٹھیک ہے، میں اس کی مان لوں گا۔ اور کہا جائے گا پھر الیوم نختم علی افواہہم، سورۃ یاسین میں پڑھ چکے آپ لوگ، کہ آج کے دن ہم مہرے لگا دیں گے ان کے منہوں پر، اور بات کریں گے ان کے ہاتھ اور ان کی کانیں، اور ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آج مجرموں کو پکڑا جا رہا ہے ریکارڈز کے ساتھ۔ قیامت کے دن کس طرح سے یہ ہوگا؟ تو یہ ہمارے گھر کی میڈز اور ہمارے ڈرائیورز بن کے ہمارا نقصان کریں گے۔ انہی کو سجاتا ہے نا انسان۔ دیکھیے ہم اسی جسم کو تو پال پال کے موٹا کریں۔ لفظ جلود بہت دفعہ آتا ہے نا قرآن میں، جلدیں۔ آج ہم سکن کانشیس ہو گئے، سکن گوری کر لو، سکن کو پالش کرا لو، سکن کی چمک کرا لو، اس کو سٹریچ کروا لو، اس کا مساج کروا لو، سکن یہ میری سکن سے میچ کرتا ہے، یہ سکن کو اچھا لگے گا، یہ پہنوں گی۔ اللہ کہتے ہیں وہ جلدیں اس دن بندے کے خلاف پولیس وین بن جائیں گی۔ اب وہ انداز ہی پتہ چل رہا ہے، وہ کہیں گے کیوں بولے بھائی تم، تمہیں کس نے کہا؟ تو کہیں گے انتقن اللہ۔ یہ جو انتق ہے نا، یہ نطق سے ہے، ہم آگے بھی پڑھیں گے وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نہیں بولتے اپنے پاس سے، تو نطق کے یہ جو اس وقت میں بول رہی ہوں، اور یہ نطق صرف انسان کو ملا۔ آپ دیکھیے پرندے کیا کرتے ہیں، طوطا ٹائیں ٹائیں، چڑیا چوں چوں، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، بکری بھاں بھاں کرتی ہے، انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ نطق بہت بڑی بات ہے، دعا کرے ہمارا نطق ٹھیک ہو جائے۔ آج کے انسان کا نطق بگڑا ہوا ہے۔ تھوڑا سا سنتے ہیں اور خود کو میدان محشر میں امیجن کریں۔
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
सोचती हूँ कि लोग जितने शौक से दुनिया के न्यूज़ चैनल सुनते हैं आज के दौर में, अगर यही शौक उनको आखिरत की न्यूज़ का हो जाए तो इस दुनिया में वो अपने आप को इस तरह ज़ाया ना करते हैं जैसे ज़ाया कर रहे हैं। एक एक लफ्ज़ ऐसा है कि जिसके ऊपर कुछ भी कहने और मज़ीद सुनने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान अगर खुद को उस दुनिया के आईने में ले जाए तो फिर अपनी कीमत ले। कितने ही लोग हैं जो आज दुनिया में अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन कल वहाँ क्या होगा? और ख़ास तौर पर आप देखिए कि ये जो लफ्ज़ है ना, योम युक शरु अदा उल्लाह, मैं जब तिलावत सुन रही थी तो मेरे जहन में कुछ मज़ीद चीज़ें इसमें आई। आप देखिए कि जो मुआशरे फितरत के करीब होते हैं, अल्लाह के नबियों की तालीमात की रोशनी में होते हैं ना, वहाँ नेक लोग नुमाया होते हैं, वहाँ अल्लाह के तरफ बुलाने वाले, अल्लाह के हुक्मों पे चलने वाले, उनका शोहरा होता है। एक शख्स कहाँ मुल्क शाम से उठता है, मदीना में आता है कि जाके मैं उमर फारूक को तो देखूं कि वो कौन है। लेकिन जब सोसाइटियों में बिगाड़ आता है, जब परवर्टेड सोसाइटीज दुनिया में आती हैं, तो जो जितना गंदा होगा, जो जितना बिगड़ा होगा, वो उतना नुमाया होगा। जैसे मर्फीज लॉस है साइंस की जुबान में, जिसको सामने रखें तो समझ में आता है कि एक गंदा टैंक है ना, आप देखें कि जितनी कोई चीज़ ज़्यादा सड़ांध वाली गंदी होती है ना, लोगों का वो मिजाज बनती जाती है, उनको अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगती। आप सीधी सी बात करें, लोग समझते नहीं है, ज़रा सा उसमें फ़न डाल दें, फ़न के नाम पे शैतान की बात डाल दें और खुश होंगे। आज आप देखें तो ऐसी नहीं है, तस्वीरें छपती हैं ऐसे लोगों की, मेडल्स मिलते हैं ऐसे लोगों को, इंटरव्यूज ऐसे लोगों के, क्योंकि मशहूर हो गए गंदे लोग। आज भी आप कोई फिल्मी सफ़ा उठा के देखें, जिस्म का हर वो इस जिसको छुपाना चाहिए उसको भरा जाता है। आप एडवर्टाइजमेंट देख लें, आप न्यूज़ चैनल देखें, कभी कभी मुझे मौका मिलता है, सिर्फ उठते चलते फिरते नज़र पड़ती है सिर्फ न्यूज़ के नाम पे घरों में टीवी चलने वालों पे। मैं सोचती हूँ ये न्यूज़ है या फैशन शो है? और शायद आपने कभी फील किया नहीं, मुझे अल्लाह ने दिखाया कि जब न्यूज़ ख़त्म होती है तो एंड पे आता है कि आज की अनाउंसर्स थी या जो भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट थी, उसने जो ड्रेस पहना था वो किस बुटीक का था। आपने देखी ये चीज़ कभी? अब देखिएगा, वो जो कपड़े पहन पहन के बैठी होती हैं, और एक पहले बैठ के पढ़ते थे, मुझे याद है आज से कई 10 15 20 साल पहले बड़े महजब तरीके से खबरें सुनाई जाती थी, अब तो उसमें भी नाचते फुदकते, और एक दिखा रहा है तो दो तीन वैसे ही चार दिख रहे हैं टीवी पे, एक वहां का नुमाइंदा एक उधर का। कहें जरा खबरें सुननी है तो सिर्फ ब्लैक कर दें स्क्रीन को, कितने सुनेंगे? रेडियो पे सुन सकते हैं, आज खबरें देखी जाती हैं। अल्लाह ऐसे लोगों की खबरें हमें खुली आंखों से दिखा रहे हैं कि तुम्हें बड़ा शौक था प्रोमिनेंट होने का, तो आओ कहो यूज़ाउन, जमा हो जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे गिरोह के साथ लेके जा रहा है, और वहाँ इंसान की स्किन और उसकी खालें जो कहेंगी। हदीस है सही मुस्लिम में, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ हम अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए थे, आपको हंसी आ गई। आपने फरमाया, आप लोगों को मालूम है कि मैं किस बात पर हंस रहा हूँ? हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। आपने फरमाया, मुझे हंसी इस कलाम पर आई, नुतुक की बात है अनतपा, उस कलाम पर आई जो मैदाने मक्षर और हिसाब के लिए खड़े होने वाले दिन में बंदा अपने रब से करेगा। ये अर्ज़ करेगा, मेरे परवरदिगार, कि आपने मुझे जुल्म से पनाह नहीं दी? अल्लाह ताला फरमाएंगे, बेशक दी है, यानी आज मुझ पर जुल्म नहीं होगा। इस पर बंदा कहेगा, अगर ये बात है तो मैं अपने हिसाब किताब के मामले में और किसी की गवाही पर मुतमाइन नहीं हूँ, बजुज इसके कि मेरे वजूद ही में से कोई गवाह खड़ा किया जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा, कफा बिनफ्सिका अल्यौमा अलैका हसीबा, सूरह बनी इसराइल की आयत 12, कि आज के दिन तो खुद ही अपने नफ्स पर काफ़ी है, यानी अच्छा है कि आज तुम अपना हिसाब खुद ही ले लो। इसके बाद इसके मुंह पर मोहर कर दी जाएगी, और इसके आज़ा और जवारिख से कहा जाएगा कि तुम इसके आमाल बतलाओ। हर उस बोल उठेगा और सच्ची गवाही पेश करेगा, इसके बाद इसकी जुबान खोल दी जाएगी तो ये खुद अपने आज़ा पर नाराज होकर कहेगा, बोधन दूरी हो तुम पे, बर्बाद हो और गारत हो तुम, मैंने तो दुनिया में जो कुछ किया तुम्हारे ही आराम पहुँचाने के लिए किया था, और आज तुम मेरे ही खिलाफ गवाही देने लगे। लिमा शहीद तुम अलैना, अला अगेंस्ट के मानों में होता है, हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हो? ये तो ऐसे है कि कोई पैसे दे दिलाकर किसी को अपनी वकालत के लिए ले जाए अदालत में, और वकील उसी के खिलाफ बोलने लगे, और जिन गवाहों को जमा करके ले गया था वो ऐन मजलिस में जाकर कह दे, नहीं जी हमें तो पैसे देकर बुलाया गया, हम तो झूठे हैं। یہ سرکاری گواہ ہیں اس وقت میرے اور آپ کے، کان آنکھ ہاتھ ان کے ناموں پہ لکھ لیں۔ اگر آپ کوئی بھی نہ مٹنے والے مارکر کے ساتھ اپنے ہاتھوں پہ ایک دن لکھیں، ایک دن اپنی سکن پہ کہیں بھی لکھ لیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میری سی آئی ڈی کر رہے ہو، تو پھر انسان گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو کہا جائے گا، ران جو تھائیس جو ہوتی ہیں ٹانگ کا اوپر کا حصہ، ران سے کہا جائے گا بول اور اس کے اعمال بیان کر، تو انسان کی ران اور گوشت اور ہڈی سب اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زنا اور بدکاری اور گناہ کے لیے چلنا چلانا ہے اس میں انسان کی ٹانگوں کا کتنا اہم کردار ہے۔ معقل بن جسار سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس کو آپ اس لیے سنیں کہ اپنے لیے چیک لسٹ بنائیں، فرمایا کہ آنے والا دن، اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والا دن انسان کو یہ ندا دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت میں میں اس پر گواہی دوں گا، اس لیے تجھے چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی نیکی کر لے کہ میں اس میں گواہی دوں، اور اگر میں چلا گیا تو پھر تو مجھے کبھی نہ پائے گا۔ اور اسی طرح ہر رات یہ ندا انسان کو دی جاتی ہے۔ تفسیر قرطبی کی یہ روایت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری تو ہنسی بند ہو جائیں، کھکھی بند ہو جائیں، رو رو کے ہچکیاں لگنے لگ جائیں اگر ہم غیب کے یہ معاملات کو دیکھنے لگیں کہ کیسے قیامت کے دن یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور وہ سب کچھ جو آج دنیا میں ہم اپنے سامنے اپنی حمایت میں استعمال کرتے ہیں وہی کل ہمارے خلاف استعمال ہونے والا ہے۔ پھر یہ جو لفظ ہے تستتیرون، تھوڑی سی اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ ستر سے ہے، سین تارہ، ساتر، ستار، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بھی یہ لفظ آتا ہے ستیر۔ دو طرح سے یہ آتا ہے، لازم بھی اور متعدی بھی۔ ایک معنی کیا ہے، اگر لازم ملے اور نہ تھے تم چھپ سکتے، یعنی چھپنے کا عمل تم نے کرنا تھا، اور اگر اس کو متعدی کے معنی میں لے لیں تو نہ تھے تم چھپا سکتے اپنے آپ کو اس بات سے کہ گواہی دے تم پر تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت اور تمہاری سکن، یعنی نہ تو تم خود چھپ سکتے ہو اور نہ تم چھپا سکتے ہو، قیامت کا دن سارے پول کھولنے والا ہے۔ اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جتنی باتیں تم نے دنیا میں کی تھیں آج ساری تمہارے سامنے آ رہی ہیں، اب اس کے بعد پھر کس بات کی گنجائش ہے؟ اس کے بعد پھر انسان اگر پھر بھی اپنے آپ کو بھولا بنا کر جیے اور وہ کام کرے جو آج کر رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جن سانپوں کو دودھ پلایا وہی ڈسنے لگے، وہی پتے جن پر تکیا تھا وہی انسان کو گرانے لگے۔ تو ضرورت ہے کہ آج اس جسم کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس روح کے تقاضے کو پورا کیا جائے جس نے قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہیاں دینی ہیں، ورنہ اس دن جب ہم اپنوں کی باتیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ امیجن تو کریں، آپ کس نے گھر ہی کے بچوں کو تصور میں لے آئیں کہ کسی مہمان کے سامنے آپ کے بچے آپ کی کوئی بات کرنا شروع ہو جائے، اور آپ ڈانٹیں، آپ دبکیں، آپ آنکھیں دکھائیں تو ساتھ وہ یہ بھی کہنے لگے دیکھے اب آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہی ہیں، مجھے پتہ ہے ایسا تھا، اور مہمانوں کو لوگ بتانے لگے کہ دیکھو دیکھو یہ امی مجھے منع کر رہی ہیں۔ اور تو اور جسم تو جسم، زمین کے ٹکڑوں نے گواہی دینی ہے۔ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، جس دن انسان کی خبریں زمین بھی دے گی تو کیا چاروں طرف ٹیپ ریکارڈرز لگے ہوں، تو انسان پھر اپنے آپ کو اتنا غیر ذمہ دار بنا کے پیش کرے دنیا میں، اس کی زندگی صرف اپنے نفس کے تقاضوں کے لیے گزر جائے۔ کانی والا کن زنن تم ان اللہ اللہ عالم کثیر مما تعملون، اس حصے کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اللہ کہتے ہیں یہ آج پتہ کیوں ہوا تمہارے ساتھ، یہ تمہارے اپنے ہی بھیدی کیوں پلٹ گئے کہ تمہارا اللہ کے بارے میں گمان جھوٹا تھا، بڑے بد گمان تھے تم اللہ کے بارے میں، اور بد گمانی کیا تھی کہ جو اکثر کام میں کرتی ہوں وہ تو اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں یہ سوچ کے تو گناہ کر رہے ہیں کہ میرے نہیں پتہ چلتے، ہاں سب کے اللہ کو پتہ چل جائیں گے۔ حسن بصری اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں ہر آدمی کا رویہ اس کے اس گمان کے لحاظ سے متعین ہوتا ہے جو وہ اپنے رب کے متعلق قائم کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بس آپ کو لگے نا کہ میرا ٹیسٹ ہوگا، तो आप उसकी तैयारी करेंगे। और आप ये गुमान कर लें, नहीं एग्जामिनर से उन्होंने टेस्ट आज छोड़ देना, नहीं करना, ऐसे ही पास कर देना है, तो आपका रवैया वैसे ही होगा। आप कहते हैं इस मुल्क की पुलिस बड़ी नरम है, आप बेल्ट ना बांधे, आप क्या सोचते हैं कि अगर रोक लिया तो मैं हंस के दिखाऊंगा वो जाने देगा, और आपको पता चले कि ये तो छोड़ेंगे नहीं, टिकट लूँ ना लूँ मुझे हंस के छोड़ दिया जाएगा। तो लिहाजा हर इंसान का रवैया उसके गुमान के लिहाज से होता है। मर्द मोमिन का रवैया इसलिए दुरुस्त होता है कि वो अपने रब के बारे में सही गुमान रखता है, और काफिर मुनाफिक और फासिक और जालिम का रवैया इसलिए गलत होता है कि अपने रब के बारे में इसका गुमान गलत होता है। और बुखारी और मुस्लिम की रवायत में तो आता ही है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है अना इंदा ज़न्न अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के बराबर हूँ, उसके मुताबिक हूँ। तो आप देख लीजिए, अल्लाह कह रहे तुमने मेरे बारे में गुमान गलत किया, दुनिया में कोई हमारे बारे में बदगुमान हो तो हम क्या कहते हैं, ने मेरे बारे में ये सोचा, सो बैड, मैं आपको ऐसी लगती हूँ। तो जब लोग अल्लाह के बारे में, इतनी बड़ी जात के बारे में ये सोचे बैठे हैं ना, ये बदगुमानी पता क्या अल्लाह के बारे में, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसने तो माफ कर देना है, मैंने उसको हंस के दिखाना है, मैंने ये कर देना है, कहा ये था वज़ालिकुम ज़न्नुकुम अल्लज़ी ज़नन्तुम बिरब्बिकुम, ये इसी गुमान की वजह से जो तुमने अपने रब के बारे में कायम किया था। क्या अरद अरदाकुम फसबहतुम मिनल खासिरीन, कि तुम्हें हलाक कर दिया बस तुम हो गए नुकसान उठाने वालों में से। या नया लफ्ज है अरदाकुम, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, उसने तुमको हलाक किया, यानी अल्लाह ताला के बारे में तुम्हारा गुमान क्या था कि उसने तुमको हलाक कर दिया। इंग्लिश जबान में कहते हैं कि योर थॉट्स बिकेम योर वर्ड्स, जो हम किसी के बारे में सोचते हैं ना वही हम उसके बारे में बोलते हैं। लोग लोगों के बारे में तो गुमान करते ही हैं, अल्लाह के बारे में जब ये गुमान किए इसी की हलाकत में आ गए, और अल्लाह ताला का अंदाज़ा गलत लगाया। उनका ख्याल क्या था कि अल्लाह की ज़ात जो है वो बस हमारे लिए वो काम कर देगी जो हम चाहेंगे और हम उससे मनवा लेंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ हलाकत की बात भी आती है, वो ये सोचेंगे कि हम तो बड़े नेक थे बस अल्लाह ने हमें हलाक कर दिया। तो बात ये थी कि अपने गुनाहों को खुद नज़र में रखने की बजाय अपने बिगड़ने और अपने खसारों और अपने नुकसान की चीज़ अल्लाह की तरफ लेकर आएंगे। ऐसे लोग जो थे अल्लाह ताला कहते फ़ाइन यस्बिरु फन्नारु मस्वल्लहुम, आज अगर ये सब्र कर लें या ना करें आग ही इनका ठिकाना है। यानी इस्बिरु औला तस्बिरु, ये मानी है सब्र कर लो फिर भी आग है, और ना करो तो भी आग है। वहीं यस्तातिबू फमा हुम मिनल मुअतबीन, और अगर वो उस वक्त अल्लाह की रजा चाहेंगे तो वो इनमें से नहीं होंगे जिन पर अल्लाह राजी हो। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, लफ्ज दो दफा आया है यस्तातिबू और मुअतबीन, आइन ताबा इसका रूट है, इसी में वाक्य भी आया था उतबा का, वो भी लफ्ज इसी से है। थोड़ी सी इसकी वजाहत करूंगी, इस तबा का मानी होता है तलबुल उतबा, किसी की खुशनुदी और रजा तलब करना। अरब लोग कहा करते थे इस ताबत हु फातबतनी, यानी मैंने उससे गुजारिश की कि वो राजी हो जाए तो वो राजी हो गया। बताया किया जा रहा है कि जब कुफार और मुशरिकीन क़यामत के दिन जहन्नुम के किनारे पर लाकर खड़े कर दिए जाएंगे और भड़कते हुए शोलों को देखेंगे आके, उस वक्त वो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, बड़ी माजरतें करेंगे, ज़मीन पर नाक रगड़ेंगे, मगर सब बेसूद क्योंकि फ़मा हुम मिनल मुअतबीन, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी देर की मेहरबानी आते, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उस वक़्त उनको। ऐसे लोग जो होंगे वो बिल्कुल अल्लाह ताला की नाफरमानियों के साथ जिएंगे उस वक्त, और अपने आप को हर मुमकिन तौर पर उस जहन्नुम के अजाब से बचाना चाहेंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। तो अल्लाह को मनाना है तो आज इस दुनिया में मनाना पड़ेगा। आज हम लोग तो कहते हैं कि एक दफ़ा ला इलाहा पढ़ लो जन्नत मिल जाएगी, 100 दफ़ा पढ़ लो, 125,000 कलमा पढ़ लो, कब्र में राहदारी का रख दो बचा लेगा। ये है वो गुमान जिन्होंने आज हम सबको भी अमल से दूर रखा हुआ है। तो कुरान पढ़ने के बाद जो बंदे के अंदर तब्दीली आती है वो क्या है कि अल्लाह के बारे में उसका गुमान ठीक होता है, آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا فائدہ ہوگا، اس کو کریں گے تو خوش ہوگا، ایک آنسو سے مان جاتا ہے، کل چیخ چیخ کے خون کے آنسو سے بھی روئیں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کی طلب لگ جائے، ہم اس کے لیے قربانیاں کرنے والے، عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ دے اس سے پہلے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔